आदरणीय उषा दीदी जी अपने बीच में पहुंचे हैं। अब मैं निवेदन करती हूं आदरणीय उषा बेन जी और कुलदीप बेन जी मंच पर आवे। सभी तालियों से एक हाथ की ताली से दीदी का अभिनंदन करेंगे। तो आज की शुभ संध्या में हम हर रविवार एवरी संडे गैदर होते हैं और आज विशेष अपने बीच में माउंट आबू राजस्थान से पहुंचे हुए फरिश्ता कहो या आध्यात्मिकता के लीडर कहो अपने बीच में उपस्थित है। अब मैं पहले निवेदन करती हूं आदरणीय कुलदीप बेन जी फूलों से स्वागत करेंगे और शब्दों द्वारा भी आप सबका भी और दीदी का भी स्वागत करेंगे। अभी फूलों से दीदी का स्वागत।
ओम शांति। आप सभी भी प्रेम से ओम शांति कहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, और थोड़ा आवाज से ओम शांति। आज शांति सरोवर में हम सभी संडे टॉक शो में आने वाले और सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो भी बीके फैमिली के भाई बहने हैं, सर्वप्रथम हम सब शिव बाबा का अभिनंदन करेंगे जिनकी शुभ प्रेरणा से आज हम सबके बीच में माउंट आबू के अरावली पर्वतों से एक फरिश्ते का अवतरण यहाँ हुआ है। उषा बहन का हम सब करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। आप सब भी पहले काफी भाई बहनों ने इनको सुना भी होगा और टीवी में भी आपके लेक्चर्स कई वर्षों से कई भाई बहन सुनते होंगे। शिवानी बहन से पहले भी उषा बहन के सोनी टीवी में बहुत से लेक्चर्स आते रहे हैं। देश विदेश में इन्होंने अनेक सेवाएं दी हैं। सदा व्यस्त रहते हैं और काफी साल पहले, मैं समझती 16-17 साल पहले आप हैदराबाद में नागार्जुना में जो हमारा सेंटर है विशेष सेवा के निमित्त आप और करीना बहन यहाँ आए थे और अल्प समय में उषा बहन ने बहुत अच्छी बिजनेस इंडस्ट्री की सेवाएं यहाँ स्टार्ट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेस आदि, और इनका आध्यात्मिक चिंतन में बहुत रुचि है और काफी नए नए क्रिएटिव लेक्चर्स तैयार करते हैं। हमें याद है जब शुरू में यहाँ नागार्जुना सेंटर का उद्घाटन हुआ था तो बाबा ने, माने परमात्मा ने इनको कुछ प्रेरणाएं दी, कुछ मैगजीन्स आदि इनको अंदर से इंट्यूशन हुआ वो मैगजीन देखो, तो ऐसे ऐसे लिटरेचर पढ़ पढ़ करके इन्होंने वो लेक्चर्स तैयार किए क्योंकि उस समय इनके लिए भी एक नई प्रकार की सेवा थी जो कभी भी हमारे विद्यालय में हुई नहीं थी। तो शिव बाबा की प्रेरणा से कहीं और इनके इंटरेस्ट में और इनकी आध्यात्मिक रुचि का भी बहुत बहुत उसमें महत्व है। तो हमारा तो उनसे बहुत उस समय से स्नेह रहा क्योंकि बिल्कुल नए यहाँ आए थे तो हर बात के लिए वो हमको फोन करके पूछते थे, हमको कुछ मैगजीन्स चाहिए, लिटरेचर चाहिए, या हमारा प्यूरिटी मैगजीन आदि भी निकलता है तो तो ओल्ड जो भी मेरे पास स्टॉक था तो इनको भेजते थे, और साथ में जो भी इनको मदद चाहिए हम भी मदद करते थे, और हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए इनसे अवसर मिला। और केवी के राजू भाई भी इनकी उस आध्यात्मिक पालना से बहुत प्रभावित हुए, और उस समय से लेकर हमने देखा कि काफी ब्रह्मा कुमारीज का नाम जो है, उस समय तो एक ही स्टेट था आंध्र प्रदेश में, बड़े बड़े वीआईपीस की बहुत अच्छी सेवाएं हुई, क्योंकि वो एक विशेष आत्मा की सेवा होने से सारे विश्व में इसका आवाज हुआ। और बहुत थोड़े समय के बाद ही उषा बहन को फिर इतनी ऊंची सेवा में बाबा ने माउंट आबू में ही बुला लिया कि वहां पर क्यों ना बहुत लार्ज स्केल में ऐसी सेवा की जाए। फिर यहाँ दूसरी बहनों को नियुक्त किया गया, और उसके बाद भी उषा बहन में बहुत विशेषताएं हमने देखी। इन्होंने रामायण पर और भगवत गीता के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की है, और उसका आध्यात्मिक महत्व बहुत सुंदर रूप से सुनाते हैं। और अभी हमने इनको आग्रह किया है कि अधिक मास में हम 1 वीक का आपका यहाँ लेक्चर्स रखेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले। और वो पुरुषोत्तम मास का महत्व भी सभी को मालूम है कि उस समय सभी में बहुत आध्यात्मिक रुचि होती है कि हम अधिक से अधिक पुण्य करें। तो आज तो हमारे बीच में उषा बहन एक लॉटरी के रूप में हमें मिली हैं। फ्री रहना चाहते थे कि आप सेवा नहीं लोगे तो मैं आती, तो हमने बोला हम नहीं लेंगे सेवा, सिर्फ संडे टॉक के लिए जो हमारे भाई बहने आते हैं केवल उनसे आप थोड़े समय के लिए मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए उषा बहन का बहुत 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 तहे दिल से अभिनंदन है, और आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है जो आप सब रुचि से यहाँ सुनने के लिए आए। वैसे तो एवरी संडे भी बहुत सारे भाई बहने आते रेगुलर, जो एवरी संडे आते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे एवरी संडे आने वाले, और आज जो पहली बार आए हैं वो भी अपना हाथ खड़ा करके बताएंगे कौन कौन पहली बार आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। अब मैं अधिक समय ना लेकर उषा बहन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना संबोधन आप सभी को जो सुख या खुशी की आवश्यकता है, आज दुनिया में सब कुछ मिलता है बाजार में, लेकिन अगर सुख भी खरीदने से मिलता तो हम समझते कि सिर्फ शाहूकार लोग ही सुखी रह सकते थे, लेकिन ये सुख कैसे ले सकते हैं, कैसे हमारे पास हैप्पीनेस आ सकती है, उसकी बड़ी अच्छी टेक्निक उषा बहन के पास है जो हम सबको सिखा कर जाएंगे, और हम सदा खुश रहेंगे इस वर्ष में और सदा काल के लिए खुश इस वर्ष से स्टार्ट करेंगे, और लाइफ लॉन्ग इस हैप्पीनेस को अपने साथ लेकर के जाएंगे। ये एक गॉडली गिफ्ट के रूप में हम लेकर जाएंगे। फिर से उषा बहन को बहुत 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 अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप बहन जी का। अभी हम सुनेंगे दीदी जी से।
ओम शांति। आज की संडे की सुनहरी संध्या में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके बीच में आकर के आज के विषय पर कुछ बोलने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज की संध्या का जो विषय है बहुत सुंदर विषय है, सुख को एक अवसर दो। सुख हमारे जीवन में आना चाहता है परंतु हम उसे अवसर ही नहीं देते, एक चांस ही नहीं देते। कैसे नहीं देते हैं और कैसे उसको चांस दे करके जीवन में आने दें, ये तो हम सभी ने पढ़ा है कि हैप्पीनेस इज अ जर्नी। मनुष्य की इस जीवन यात्रा में हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है, एक यात्रा है। कई बार हम उसको डेस्टिनेशन ही समझ लेते हैं, कि ये चीज हमारे जीवन में आ जाए तो मैं सदा सुखी रह जाऊंगा, ये प्राप्त हो जाए तो मैं सदा सुखी हो जाऊंगा। परंतु ऐसा कोई भी समय नहीं आता है। मनुष्य ने धीरे धीरे जीवन में बहुत सारी मटेरियलिस्टिक उपलब्धियां कर लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी सुख कोसों दूर रह गया। वो आना चाहता है यही सोच करके कि मेरा मालिक मुझे प्रयोग करे, मेरा अनुभव करे, लेकिन मालिक शायद अपने में ही इतना व्यस्त है कि सुख का अनुभव करने का उसको ख्याल भी नहीं आता है। किस बात में हम व्यस्त हैं? कई उलझनों में व्यस्त हैं। कौन सी उलझने हमारे जीवन में हैं जिस कारण से हम सुख को एक मौका ही नहीं देते हैं? जो थोड़ा बहुत मैंने चिंतन किया उस पर मुझे महसूस हुआ कि आज का मनुष्य या तो स्वयं में उलझा हुआ है, या तो साधन सुविधाओं में उलझा हुआ है, या तो परिस्थितियों में, समस्याओं में उलझा हुआ है, या तो संबंधों में उलझा हुआ है। मुख्य रूप से ये चार एस्पेक्ट्स है हमारे जीवन के जिसमें हम उलझे हुए हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट अगर लिया जाए कि जो व्यक्ति स्वयं में उलझा हुआ है, स्वयं में कैसे उलझे हुए हैं? पहली बात स्वयं की उलझन है कि आज की जो एक तीव्र गति वाली जीवन है, इसमें हमारे मन के विचार नेगेटिव बहुत चलते हैं या फालतू विचार बहुत आते हैं, और ये नेगेटिव विचार फालतू विचारों में हम उलझे हुए हैं और उसको इतना पकड़ के रखते हैं जीवन में, छोड़ते नहीं है, इसीलिए सुख जीवन में आता नहीं है। कहा ना, सुख आना चाहता है लेकिन हम उसको अवसर ही नहीं देते हैं, क्योंकि इतने नेगेटिव विचारों को पकड़ा हुआ है अंदर में, उसको छोड़ते नहीं है। वो कहानी याद आती है मुझे, शायद आप लोग ने सुनी भी होगी, कि एक बार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, और जब क्लास में आए तो खाली चाय के मग लेकर के आए, टेबल पर रख दिए, सभी स्टूडेंट्स को कहा एक एक मग उठा लो। स्टूडेंट्स ने बड़े उत्साह के साथ मग उठा लिया, सोचा आज सर कुछ पिलाने वाले हैं। सर ने कहा मग पकड़ के खड़े हो जाओ। सारे स्टूडेंट्स ने मग पकड़ लिया हाथ में, खड़े हो गए। सर अपना कुछ काम करने लगे। 5 मिनट बीत गई, 10 मिनट बीत गई, कुछ कहा ही नहीं। तो सारे बच्चे एक दूसरे को देखने लगे कि सर कुछ कह ही नहीं रहे हैं, ये हवा में मग पकड़ा के खड़ा कर दिया। आखिर एक स्टूडेंट ने पूछ ही लिया, सर कितनी देर तक ये पकड़ के खड़े रहना है? सर ने कहा कि क्यों? कहा नहीं, हाथ दर्द कर रहा है। सर ने कहा 10 मिनट के अंदर ये मग का वजन बढ़ गया क्या? कहा नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, खाली मग है, पकड़ के खड़े रहो। स्टूडेंट्स ने कहा अगर ये मालूम हो जाए कितनी देर पकड़ के खड़े रहना है तो माइंड को कंडीशन कर ले। सर ने कहा अगर मैं कहूं कि 2 घंटा पकड़ के खड़े रहो? सब एक दूसरे को देखने लगे।
कहने लगे सर ये हाथ सुन्न हो जाएगा। सर ने कहा अगर मैं कहूं कि 6 घंटा पकड़ के खड़े रहो, कहा ये हाथ अकड़ जाएगा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 24 घंटा पकड़ के खड़े रहो, फिर कहा ये हाथ कोई काम का नहीं रहेगा। सर ने कहा फिर क्या करना चाहिए, कहा खाली मग है पकड़ के क्यों खड़े रहे, रख देना चाहिए। सर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं, फालतू बातें जो पकड़ के खड़े हैं जीवन में, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 दिन, 24 घंटे, 2 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, कितने देर तक हम फालतू विचारों को पकड़ के कर, इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, ये कहा था, और उन विचारों को इतना पकड़ के खड़े हैं, क्या यह दिमाग सुन्न नहीं हो जाएगा, क्या यह दिमाग अकड़ नहीं जाएगा? अरे फालतू विचारों को छोड़ो, लेकिन कैसे छोड़ना है ये नहीं आता है, और इसलिए उन विचारों को बार बार जब दोहराते हैं तो सुख को आने का अवसर मिलेगा। जितनी बार वो विचारों को दोहराते हैं उतनी बार उसके साथ कई प्रकार की स्मृतियां ले आता है, और जैसे एक इलास्टिक को खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, ऐसे ये बातों को पकड़ करके अगर दिमाग में खींचते रहेंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कितना समय हमारा व्यर्थ चला जाता है, और उतना समय सुख को जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूं कि भाई जीवन है, कई प्रकार की बातें सामने आती है, कई लोगों को गुस्सा आता है, कई लोग पूछते हैं कि क्या हमें किसी बात पर अपसेट नहीं होना चाहिए, अगर कोई गलती कर रहा है गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखो जीवन है, एंड लेट मी बी मोर प्रैक्टिकल, कि बातें आएगी, आपको इरिटेशन भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन उस गुस्से को या इरिटेशन को प्रोलोंग ना होने दे, आए बस उस वक्त आकर के उसको छोड़ दो। ठीक है, अपने आप को कोई ना कोई रीति से समझा करके उसको प्रोलोंग होने न दो, जल्दी अपने आप को ठीक कर लो, अपनी मेंटल स्टेट को ठीक कर लो और सुख को आने दो। आई बात आई, उस समय इरिटेशन निकला, रिएक्शन निकला, पूरा हुआ, फिर उसको पकड़ के तो ना रखो, पकड़ना किसको है, अच्छी बातों को पकड़ना है। इसीलिए कहा कि हमें जीवन के अंदर ये चुनाव जरूर करना होगा, कितनी देर हमें उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव और फालतू विचारों में उलझे रहेंगे उतना हम मन की शक्ति को सारी ड्रेन करते जाएंगे। क्यों नहीं हम सुख को पकड़ते हुए अपनी मनस्थिति को इतना हेल्दी बना दे, स्वस्थ बनाएं, ताकि वो बातें हमारे जीवन के अंदर, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे जीवन के हर व्यवस्था को डिस्टर्ब न करे। दूसरी बात कि बहुत सुंदर गीता की बात बहन जी ने कही, उसी गीता से बात मैं उठाती हूं कि गीता में बहुत सुंदर ये बात कही है भगवान ने 2 अध्याय में अर्जुन को, कि हे अर्जुन स्वधर्म सुख देता है पर धर्म दुख का कारण है। स्वधर्म माना लोग अक्सर यही समझते हैं कि स्वधर्म माना क्षत्रिय धर्म की बात की गई है, और इसलिए भगवान ने उसको कहा कि क्षत्रिय धर्म के हिसाब से तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए और यही तुम्हारा सही धर्म है। वास्तव में क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रिय धर्म वालों के लिए ही था? नहीं, सारी मानव जाति के लिए। और अगर सारी मानव जाति के लिए ये गीता का ज्ञान है तो स्वधर्म का मतलब कुछ और है। स्वधर्म का मतलब है कि हर चीज का अपना एक गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबाल लिया जाए, उबाल उबाल के रख दो, वापस अपने गुण धर्म में शीतल स्वरूप में आ जाएगा। इसी तरह हम मनुष्य आत्मा का गुण धर्म क्या है? हमारा गुण धर्म शांति, प्रेम, आनंद, ये हमारा गुण धर्म है। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि गुस्सा कर लेने के बाद या नेगेटिव सोचने के बाद आई फील कंफर्टेबल, कहेंगे नहीं। नेगेटिव सोचने के बाद वी आर नेवर कंफर्टेबल, परेशान हो जाते। तो हमारा जो स्वधर्म है, आत्मा का गुण धर्म, शांति, प्रेम, आनंद, जब आनंद की स्थिति में रहते हैं, सुख की स्थिति में रहते हैं, शांति की स्थिति में रहते हैं, वी फील कंफर्टेबल, ये हमारा गुण धर्म है। तो स्वधर्म सुख का आधार है। जीवन में अगर सुख चाहिए तो स्वधर्म में, आत्मा के गुण धर्म में अपनी कॉन्शियसनेस को स्टेबलाइज करो। जितना हम अपनी कॉन्शियसनेस को पर धर्म, पर यानी शांति से पर क्रोध है, शांति से पर स्ट्रेस है, प्रेम के पर स्वार्थ है या नफरत है, तो जब व्यक्ति स्वार्थ में, नफरत में, स्ट्रेस में, क्रोध में होता है तो उसको खुद को दुख की प्राप्ति होती है। तो स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। जीवन में अगर दुख प्राप्त हो रहा है तो उसका कारण क्या है? कि हम पर धर्म में स्थित हो जाते हैं। इसीलिए तो पर धर्म दुख का कारण है, उसमें अपने आप को स्थित न करो। कॉन्शियसनेस को स्वधर्म में स्थित करो। जितना जल्दी वापस हम अपने स्वधर्म में स्टेबलाइज कर लेते हैं उतना सुख की अनुभूति या सुख को जीवन में अवसर देते हैं। तीसरी बात, जीवन के कुछ सिद्धांतों को हम समझ ले। पहला सिद्धांत तो हमने देखा कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। नकारात्मक फालतू विचारों को सोचेंगे तो जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। दूसरा सिद्धांत है कि न दुख दो न दुख लो। न मुझे किसी को दुख देना है, न किसी से दुख लेना है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, हम किसी को दुख देते नहीं लेकिन लोग हमें देते हैं तो क्या करें? लोग देते तो नहीं लो ना। आपको कोई चीज दे रहा है, आपके कोई काम की नहीं है और आप स्वीकार न करो तो किसके पास रहेगी? उसी के पास रहेगी ना। तो देना नहीं है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लेना भी नहीं है। अब न ले उसके लिए क्या करें? न लेने के लिए हमेशा ये याद रखें कि जो कुछ भी दिया गया है अगर हमने नहीं लिया तो वो हमारे जीवन में जबरदस्ती घुसेगा नहीं। इसलिए न देना है न लेना है। अच्छी चीजें देते जाओ, अच्छी चीजें लेते जाओ। कई अच्छी भावनाएं, शुभ भावना, शुभ कामना, जैसे मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। आपको जीवन में किसी से सहयोग चाहिए तो सहयोग देना होगा। आपको प्यार चाहिए, प्यार देना होगा। What you give, you get. This is an eternal law of nature. जो देंगे वही वापस आएगा। अगर मैं किसी को सम्मान दूं तो मुझे सम्मान मिलेगा। मैं किसी को गाली दूं मुझे गाली मिलेगी। मैं किसी से नफरत रखूं नफरत मिलेगी। किसी को दुख देंगी दुख ही मिलेगा। इसीलिए मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। ये जीवन का एक अनादि सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हमें याद रखना है। तो जितना अच्छा देते जाएंगे उतना ही वापस हमारे पास अच्छाई के रूप में वही चीज, इट्स लाइक अ बूमरैंग इफेक्ट। बूमरैंग जैसे छोड़ते हैं तो वो घूम के वापस खुद के पास ही आता है। इसीलिए बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा है कि रास्ते पर चलते हुए कांटे बिछाते हुए ना चलो, क्योंकि क्या मालूम मुड़ करके वापस हमें उसी रास्ते से आना पड़े। अगर उसी रास्ते पर आना पड़े और हमने ही कांटे बिछाए हैं तो क्या होगा, वो कांटे तो स्वयं को ही लगेंगे ना। इसीलिए रास्ते अगर चलते हुए फूलों को बिछाते चलो, अगर गलती से भी उस रास्ते से वापस गुजरना पड़े तो कम से कम फूलों से ही तो गुजरना होगा। कितनी सुंदर किसी की एक भावना कल्पना है। तो हमेशा दूसरों को हम जो देंगे वही हमारे पास वापस आएंगे, ये जीवन का एक अनादि सिद्धांत है, उसको याद रखें। तो स्वयं के प्रति ये उलझनों को समाप्त करने की ये छोटी छोटी टिप्स है। दूसरे कहां उलझे हुए हैं? दूसरे उलझे हुए हैं साधन सुविधाओं में। आज का मनुष्य साधन सुविधाओं में उलझा हुआ, ये साधन आ जाए, वो सुविधा मिल जाए, ये सुविधा आ जाए जीवन के अंदर तो हम सदा सुखी रहेंगे। वास्तव में अनेक सुख सुविधा के साधन हमने जीवन में अपना लिए, लेकिन ये सारे सुख सुविधा के साधन आ जाने के बाद भी सुख तो आया ही नहीं। तभी किसी ने सही कहा है, डनलप के गद्दे पर सोने पर भी चैन की नींद नहीं है, रात को गोलियां लेनी पड़ती है सोने से पहले, तब तो जाकर कहीं नींद आती है। एसी में बैठने के बाद भी व्यक्ति का टेम्परामेंट इतना हाई है कि उसको एसी में भी पसीना होने लगता है। कैसी लाइफ हमने बना दी है, शायद हमने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मनुष्य जो कुछ सोचता है ना वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचता है, सिंपल सोचना उसके बस में नहीं रहा, और कभी कभी उत्तर बहुत सिंपल चीजों में ही मिल जाता है, और मनुष्य इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचता जाता है। तो हम अपने नेचर को इतना कॉम्प्लिकेटेड न बनाएं। साधन बहुत अच्छी चीज है, कलयुग का ये वरदान है, शायद अच्छे अच्छे साधन आज दुनिया के अंदर निकलते जा रहे हैं, लेकिन साधन को अगर मालिक बनकर के प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साधन की गुलामी को स्वीकार न करो। आज मनुष्य साधन का प्रयोग करते करते कहीं गुलामी को स्वीकार करने लगा है। कैसे गुलामी को स्वीकार कर लिया है? मोबाइल है, बहुत अच्छा साधन है ना, कई कार्य कर देता है, और उसमें आजकल के जो स्मार्टफोन्स आए हैं उसमें जितने एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशंस को यूज करते हुए काम इतना सहज हो जाता है। एक जगह पर बैठ करके सारी दुनिया के साथ व्यक्ति कनेक्टेड रह सकता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आज मनुष्य कहीं न कहीं उसकी गुलामी को स्वीकार कर लिया है। कैसे? खाना खाने बैठा है, हाथ में मोबाइल है, सामने वाला टेंशन दे रहा है, खाना खा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो खाना हजम होगा? हाँ, कई बार कई लोग कहते हैं खाना तो शांति से खा लो, मना कहाँ साधन। कई लोग कह भी देते कि पहले जब ये मोबाइल नहीं थे ना तो काफी शांति थी, जब से मोबाइल आया है शांति खत्म हो गई है, व्यक्ति शांति से खा नहीं सकता है ना। तो ये साधनों की गुलामी है। तीन जगह ऐसी है जहां मोबाइल का मुंह बंद रखना ज्यादा उचित रहता है। एक तो जब खाना खाने बैठे हो पहले उसका मुंह बंद करो, शांति से खा तो लो, गुस्सा कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, वो खाना हजम तो होगा ही नहीं ना, तो अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं ना। प्यार से, शांति से, ईश्वर की मधुर स्मृति में अगर वो भोजन को स्वीकार किया जाए तो वो भोजन हजम भी तो होगा। दूसरा, कई लोग बाथरूम में भी लेके जाते हैं मोबाइल। अरे बाथरूम में ले जाने की क्या जरूरत है? इतनी गुलामी तो न स्वीकार कर लो। और तीसरा, जब ऐसे सुंदर सत्संग में बैठे हो, इतना सुंदर बातें सुन रहे हैं, कई लोग वहां भी मोबाइल चालू रखते, कहना पड़ता है, अनाउंसमेंट करना पड़ता है, मोबाइल स्विच ऑफ करिए, लेकिन फिर भी वहां पर भी मोबाइल बजते रहते हैं। कहने का भावार्थ मेरा ये है कि जहां ऐसा सुंदर स्थान हो, वातावरण हो, जहां अपने पर्सनल क्रियाकर्म कर रहे हो, जहां अपना भोजन पानी आदि कर रहे हो, तो कम से कम मालिक बन के उसका प्रयोग करो, उसकी गुलामी को स्वीकार न करो। क्योंकि जब उसके गुलाम बन जाते तो वो हमारे जीवन को क्या कर देते हैं? परेशान कर देते हैं। तो साधन सुविधाओं में आज इतना मनुष्य उलझा हुआ है, तो इसलिए कहा साधन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गुलामी को स्वीकार न करे तब तक वो बहुत अच्छी है। जिस दिन गुलामी स्वीकार कर ली, वो हमारे जीवन को परेशान करके रख देगा। तीसरा, कई बार हम संबंधों में उलझे हुए हैं। संबंध शायद भगवान ने इसीलिए दुनिया में बनाए हैं, रिश्ते संबंध ये इसीलिए बनाए हैं ताकि हम जीवन के अंदर कहीं पर भी अकेलापन में महसूस न करें, हम सबके साथ मिलकर के रहे। विश्व एक परिवार के रूप में है, तो विश्व एक परिवार के नाते से विश्व बंधुत्व की भावना को भगवान ने जैसे हमारे अंदर इंस्टिल किया था, लेकिन आज मनुष्य अपने आप में इतना अकेला होता जा रहा है, क्योंकि जो रिश्ते संबंध उसके बने हुए थे, उस रिश्ते संबंधों से भी कहीं ना कहीं हम बहुत दूर हो गए, क्योंकि चुनाव हमने सही नहीं किया है। वी डिड नॉट मेक अ राइट चॉइस, है ना? और किस तरह से हम दूर होते गए, वो बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है, द स्टोरी ऑफ अ थ्री वाइज मैन। कहा जाता है कि एक बार थ्री वाइज मैन एक शहर से गुजर रहे, रात का समय हो चुका है, बहुत ठंडी बढ़ रही है, बर्फ गिरने लगी, तो वो ठंडी में बाहर में ठिठुर करके बैठे हैं। एक परिवार सामने रहता था, उस मकान के सामने, उस घर के सामने वो ठिठुर रहे थे। वो पत्नी जो है सारे दरवाजे खिड़की बंद कर रही थी, तब उसकी नजर गई ये तीन व्यक्ति के ऊपर और सोचा कि इतनी ठंडी है, बर्फ गिर रही है, ये ठिठुर रहे हैं। तो उसने दरवाजा खोला और सज्जन उनको लग रहे थे, तो लगा कि उनको अंदर बुला लो। तो कहा, आप ठंडी में बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर आ जाइए, अंदर बैठिए। तो वो तीनों ने कहा कि हम तीनों एक साथ नहीं आ सकते, हम तीनों में से कोई एक ही आ सकता है, आपको चॉइस करना होगा, आप किसको बुलाना चाहते हैं। तो वो बहन ने कहा कि आपका परिचय? तो एक ने कहा कि मैं हेल्थ हूं, स्वास्थ्य हूं। दूसरे ने कहा मैं वेल्थ हूं, संपत्ति हूं। और तीसरे ने कहा मैं प्रेम। आप अपने घर में किसको बुलाना चाहते हैं? आप जाकर अपने परिवार वालों से पूछ के आइए किसको बुलाना चाहते हैं। वो अंदर आई और उसने ये घटना सुनाई अपने परिवार वालों के सामने। उसके परिवार में उसके सास ससुर थे जो बुजुर्ग थे, बीमार थे, उसके पति, उसके बच्चे, उसके भाई बहन, ये सब थे। तो जैसे उसने ये बात कही तो बुजुर्ग माता पिता जो बीमार थे, कहा क्यों नहीं हेल्थ को बुला लिया जाए, हम स्वस्थ हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो पति और उसका भाई और बहन ने कहा रे नहीं नहीं संपत्ति को बुला लीजिए, संपत्ति आ जाएंगी तो आपकी हेल्थ को हम ठीक करवा देंगे, संपत्ति की बहुत आवश्यकता है इस वक्त। तो दो छोटे छोटे बच्चे घर में थे, तो बच्चों ने कहा क्यों नहीं हम प्रेम को बुलाएं। सभी ने अलग अलग जवाब दिए, अब किसका चुनाव करें, संपत्ति को बुलाया जाए, हेल्थ को बुलाया जाए या प्यार को बुलाया जाए। आखिर सब ने फाइनल फैसला कर लिया, बच्चों ने जो कहा है उसी को मान लिया जाए, बच्चों ने प्रेम को मांगा है, प्रेम को बुला लिया जाए। तो बहन बाहर आई और कहने लगी आप में से जो प्रेम है वो हमारे घर में आ जाइए। तो जैसे ही प्रेम को बुलाए तो उसके पीछे पीछे वो दूसरे दो भी आ गए। तो बहन ने कहा तो आपने तो कहा एक ही व्यक्ति आ सकता है। तो कहा नहीं, अगर आपने स्वास्थ्य को बुलाया होता तो सिर्फ स्वास्थ्य आता, अगर आपने संपत्ति को बुलाया होता तो सिर्फ संपत्ति आती, लेकिन क्योंकि आपने प्यार को बुलाया है तो जहां प्यार होगा वहां स्वास्थ्य भी होगा और संपत्ति भी होगी। आज शायद संबंधों में, परिवारों में ये चुनाव प्यार से रहने का, प्यार से मिलजुल करके चलने का बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके जैसी संपत्ति और कोई नहीं है। वही हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत सुंदर और हमें अंदर से सशक्त करने वाली बात है। तो हमें अपने संबंधों में, परिवार के अंदर उलझने के बजाय जितना हम प्यार से रहेंगे उतना ही हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने परिवार के अंदर घर को सही स्वरूप से घर बना सकेंगे, नहीं तो वो मकान ही रह जाएगा। और उसको जब घर बना लिया जाएगा तो सुख को एक अवसर दे देते हैं अपने परिवार के अंदर आने के लिए, सुख को एक चांस दे देते हैं अपने घर के अंदर निवास करने के लिए। इसलिए सुख को जरूर आने दो, लेकिन उसके लिए एक दूसरे के प्रति हमारा सम्मान बना रहे, प्यार बना रहे, उसके लिए और एक बात की बहुत आवश्यकता है कि जिसको भी हम देखें, एक दूसरे से व्यवहार करें, एक दूसरे से बातचीत करें, तो वहां पर एक दूसरे की विशेषता को देख करके अगर चलेंगे जीवन के अंदर तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। वो रामायण से एक बात याद आती है, बहन जी ने जब परिचय में ही कह दिया तो रामायण से एक बात याद आती है। कहा जाता है कि जब रावण मृत्यु शैया पर था तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आज एक महान विद्वान इस संसार से विदाई ले रहा है, क्योंकि कहा जाता है रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था, बुद्धिशाली नहीं था और न कोई हुआ है, 10 इंसान जितनी बुद्धि उसके पास थी। तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आज एक बुद्धिशाली महान विद्वान इस संसार से विदाई ले रहा है और उसके पास अनुभव का बहुत खजाना है, तुम जाओ और उससे कुछ सीख कर आओ। लक्ष्मण के मन के अंदर आया रावण मुझे क्या सिखाएगा, उसके पास ऐसा क्या होगा जो मुझे सिखा सकता है। लेकिन श्री राम की आज्ञा थी तो माननी तो पड़ेगी और इसीलिए श्री राम की आज्ञा को मान करके वो चला गया और सिर के पास जाकर खड़े होकर उसने रावण से संबोधित करते हुए कहा कि हे रावण, मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे आज्ञा दी है कि आपसे मैं कुछ सीख करके सीख प्राप्त करूं, तो आप अपने जीवन के अनुभव से मुझे कुछ सीख दो। रावण मौन हो गया, कुछ नहीं कहा उसने, 5-7 मिनट खड़ा रहा, 10 मिनट खड़ा रहा। जब रावण ने कुछ कहा ही नहीं तो लक्ष्मण क्रिटिकली हंसते हुए सोचने लगा उसके पास कुछ होगा तब तो मुझे सीख देगा, मुस्कुराते हुए वापस आ गया। श्री राम ने पूछा क्या सीख दी, कहा उसके पास कुछ हो तब तो देगा ना, कुछ है ही नहीं उसके जीवन में। तो श्री राम ने उसको पूछा अच्छा तुम कहां खड़े थे, कहा मैं सिरहाने खड़ा था। तो कहा जब किसी से कुछ प्राप्त करना होता है तो नम्रता चाहिए, पैरों के पास खड़ा होना पड़ता है, सिर के पास नहीं। सिर के पास खड़ा रहना ये तो अभिमान का प्रतीक है, इसलिए तुम्हें सीख ग्रहण करनी है तो शिष्य की भांति पैरों के पास खड़े होकर बड़े नम्रता पूर्वक उससे सीख प्राप्त करो। लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पुनः गया, पैरों के पास खड़े होकर हाथ जोड़ करके बड़े विनम्रता के साथ सिर झुकाते हुए उसने कहा कि हे ब्राह्मणों में उत्तम, क्योंकि रावण तो ब्राह्मण था, तो हे ब्राह्मणों में उत्तम, मुझे अपने जीवन के खजाने में से कुछ अमूल्य सीख दे दो। जब बड़ी विनम्रता के साथ ये निवेदन किया तो रावण ने तीन सीख दी उसको। पहली सीख उसको दिया कि अपने हितेशियों को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, जीवन में अपने हितेशियों को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। मैंने जीवन में ये बहुत बड़ी गलती की कि विभीषण ने मुझे सीख देना चाहा, समझाना चाहा कि मैं सीता को लौटा दूं, लेकिन उसको मैंने ठुकरा दिया। मेरे नाना जी ने मुझे सीख देना चाहा कि मैंने जो कुछ किया है वो गलत किया है, लेकिन मैंने उन्हें भी ठुकरा दिया। मंदोदरी ने मुझे बहुत बार समझाने का प्रयत्न किया लेकिन मैं उसको भी ठुकराता रहा। क्यों ठुकराया मैंने, क्योंकि कहा कि जैसे ही वो मेरे हितेशी थे, मेरा भला चाहते थे, मेरा अच्छा चाहते थे, इसीलिए मुझे सीख देते थे। लेकिन जब मैं वहां से दरबार में जाता था तो वहां मेरे कुछ ऐसे लोग थे मेरे आसपास जो मुझे मक्खन लगा के फ्लैटर करते थे और मेरे अहंकार को उकसाते थे, और मैं उनको सच्चा हितेशी मानता था, लेकिन वास्तव में वो मेरे हितेशी नहीं थे। वो मुझे फ्लैटर कर रहे थे, मेरे अहंकार को पोस रहे थे, और इसीलिए आज मेरी ये गति हुई है। तो जीवन के अंदर आपको फ्लैटर करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, अगर आप उनका सुनने लगेंगे कुछ क्षणिक सुख का अनुभव होगा, लेकिन लॉन्ग रन में दुख की अनुभूति ही प्राप्त होगी। लेकिन जब अपने हितेशी हमें कोई अच्छी बात कह रहे हैं, हो सकता है कि वो अच्छी बात उस वक्त कड़वी भी महसूस हो, लेकिन अगर उस कड़वी सीख को भी जीवन में अपना लिया जाए तो शायद हम जीवन के कई प्रकार के तकलीफों से, कई प्रकार के गलतियों से अपने आप को बचा सकेंगे, या कई प्रकार के दुख दर्द से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। तो पहली सीख उसने हम ये दी लक्ष्मण को कि अपने हितेशियों की बात को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, वो भले कड़वी भी लगे तो भी उसको जीवन में अपना लेना ही समझदारी है। जितना फ्लैटरिंग करने वाले, बटर लगाने वाले की बातों को सुनते जाएंगे, दुख की ही प्राप्ति अंत में होगी। ये पहली सीख। दूसरी सीख उसने दी कि सामने वाले को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं हमेशा यही समझता रहा कि श्री राम और लक्ष्मण दो मानव ही तो हैं, और मैंने उनकी शक्ति को कभी समझा ही नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट करता रहा। तो कभी भी सामने वाले की शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां हम गफलत कर बैठते हैं और जीवन के अंदर कई प्रकार के नुकसान। पूरी मेरी लंका जल गई, जबकि मेरे पास कई ऐसे संदेशवाहक आए जिन्होंने मुझे महसूस कराना चाहा, हनुमान ने महसूस कराना चाहा लंका जला करके, अंगद ने महसूस कराना चाहा, ऐसे कई लोग आए जो महसूस कराना चाहते थे कि ये साधारण मानव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसकी शक्ति को पहचान नहीं सका और हमेशा उसको साधारण समझता रहा, मामूली समझता रहा, वैल्यूलेस समझता रहा, और मैं यही समझता था कि मेरी शक्ति के आगे उनके पास कोई शक्ति नहीं है। तो जीवन में कभी कभी हम गलती से जिसको साधारण समझ लेते हैं, ये व्यक्ति मामूली है, ये क्या करेगा, लेकिन कभी कभी वो मामूली व्यक्ति भी बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकता है, और कभी कभी वो मामूली व्यक्ति ही हमें ऊंचाई की ओर जाने का रास्ता भी दर्शा देता है। रामायण की ही बात है कि एक साधारण से साधारण औरत शबरी श्री राम को भी रास्ता दर्शाने के लिए निमित्त बन गई और कहा ऋषिमुख पर्वत की ओर जाओ, वहां आपको हनुमान मिलेगा जो आपके कार्य को अंजाम तक पहुंचा देगा। साधारण औरत है ना, लेकिन श्री राम ने उसको भी इतना ही सम्मान दिया, उसके झूठे बैर तक खाए और वही निमित्त बनी उसको आगे का रास्ता दर्शाने के लिए। तो कभी कभी हम किसी को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये साधारण व्यक्ति क्या है, कुछ नहीं है, हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो साधारण व्यक्ति ही कभी कभी हमारे जीवन को उन्नति की ओर जाने के लिए हमें प्रेरित कर देता है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति को कभी भी साधारण समझ करके उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उसका इंसल्ट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसल्ट कभी कभी हमें बहुत महंगा पड़ सकता है जीवन के अंदर। इसीलिए सुख के आने के अवसर सारे समाप्त हो जाते हैं जब सामने वाले को हम साधारण समझ लें। ये दूसरी सीख दी। और तीसरी सीख दी कि जब भी शुभ कर्म करने का विचार आए तो उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। कहा मेरे जीवन में कई बार ये विचार मुझे आया कि मैं सीता को लौटा दूं, लेकिन सोचता था कल सुबह, कल के ऊपर पोस्टपोन कर देता था, और जैसे ही उसको पोस्टपोन करता था तो दूसरे दिन वो संकल्प मेरा वापस परिवर्तित हो जाता था, नहीं लौटाना है। तो जब भी शुभ कर्म करने का विचार भी आए तो उसको पोस्टपोन नहीं करो, तुरंत करो, तो उसकी इंटेंसिटी भी इतनी रहेगी और उस इंटेंसिटी से जब उसको करेंगे प्रैक्टिकल में, तो जीवन के अंदर वो शुभ कर्म कई बार हमें बहुत सुख की अनुभूति कराता है। जब भी जीवन में व्यक्ति कोई गलत काम करता है उसको दुख की प्राप्ति होती है, वो दुख के लिए दरवाजा खोल देता है, लेकिन जब भी जीवन के अंदर शुभ कर्म करता है और जब उसी वक्त विचार आया और उसी वक्त करेगा तो उसकी इंटेंसिटी भी इतनी ही पावरफुल रहती है और उसका फल भी उसी अनुसार प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा कि हर एक की विशेषता को देखते हुए, हर एक को विशेष समझते हुए, साधारण न समझते हुए और शुभ कर्म करने का प्रयत्न करें तो जीवन के अंदर सदा सुखी हो जाएंगे। बहुत सुंदर एक बात मुझे याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति भगवान को बहुत याद कर रहा था, भगवान उसके सामने प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसको कहा मांगो, जो मांगना चाहो दे दूंगा। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ भगवान का दर्शन करके, उसने कहा कि हे प्रभु, मैं जीवन में सदा सुखी रहना चाहता हूं, मैं दुखी कभी नहीं होना चाहता, आज हर व्यक्ति यही चाहते हैं कि अगर भगवान साक्षात प्रसन्न हो जाए तो हर व्यक्ति क्या मांगेगा, भगवान मैं दुखी नहीं होना चाहता, सदा सुखी होना चाहता। तो उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि हे प्रभु मैं सदा सुखी होना चाहता हूं, ऐसा कोई मंत्र बता दो मैं सदा सुखी हो जाऊं। आप भी सदा सुखी होना चाहते तो आज आपको भी वो मंत्र दे देते हैं सदा सुखी होने के लिए। लेकिन कर पाएंगे, करेंगे? सदा सुखी होना है तो करेंगे। तो वो व्यक्ति ने भी जब कहा कि हे प्रभु मुझे मंत्र दे दो, सदा सुखी होना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने एक वो कावड़ आता है ना, कावड़ मालूम है, जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को बिठा करके यात्रा कराता था, उसको कावड़ ही कहते हैं ना, पता नहीं तेलुगु में क्या कहते हैं, कावड़ कहते हैं हिंदी में। तो भगवान ने उसको वो कावड़ दिया और एक तरफ काला कपड़ा था, एक तरफ सफेद कपड़ा था। तो भगवान ने उसको कावड़ देते हुए यही कहा मनुष्य को कि देख सदा सुखी होना है तो सफेद कपड़ा आगे रखना, सफेद कपड़े से जो ढका है वो आगे रखना और काला कपड़ा वाला पीछे रखना। गलती नहीं करना, काला कपड़ा कभी आगे नहीं करना, काला कपड़ा पीछे रखना, सफेद कपड़ा आगे रखना। तो मनुष्य ने पूछा हे प्रभु इतना तो बता दो ये काला कपड़ा और सफेद कपड़ा है क्या चीज। तो भगवान ने कहा कि जीवन की यात्रा में जब तुम चलोगे तो बहुत लोगों से मिलना होगा, तेरा मुलाकात होगी और हर व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण दोनों चीज है, दोनों है, गुण भी है अवगुण भी है, अच्छाई भी है बुराई भी है। लेकिन जब भी तुझे किसी की बुराई दिखाई देना तो उसको पीछे डाल देना, ये काले कपड़े वाले में डाल देना पीछे, और जिसकी भी अच्छाई दिखाई दे उसको आगे रखना। वो कावड़ पकड़ा है तो सफेद कपड़ा आगे है तो आगे रखना उसको और चलते चलना। किसी के साथ भी जब तुम व्यवहार करो तो उसकी अच्छाई को देख करके ही व्यवहार करना, उसकी बुराई को सामने नहीं लाना, बुराई पीछे डाल देना और अच्छाई को ध्यान में रखते हुए उसके साथ व्यवहार करना तो सदा सुखी रहेगा। मनुष्य ने कहा इतनी सहज बात है, ये तो मैं कर लूंगा, है ना। तो सतयुग और त्रेतायुग जब तक चलता रहा तब तक तो मनुष्य ने सफेद कपड़ा आगे रखा, काला कपड़ा पीछे रखा, हर एक के गुण को देखते हुए, उसको सामने रखते हुए, अच्छाई को देखते हुए व्यवहार करता था। अगर किसी के अवगुण दिखाई भी दिए तो पीछे डाल देता था, चित्त पर नहीं रखता। हम भगवान को भी प्रार्थना में क्या कहते हैं, हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, गाते हैं ना भजन, भगवान को कहते हैं मेरे अवगुण चित्त न धरो और हम सभी के अवगुण चित्त पर धर करके व्यवहार करते हैं, ये कहां का न्याय है बताओ। तो जैसे हमने भगवान से कहा कि हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो भगवान भी हमें यही कहता है दूसरे के भी अवगुण चित्त पर न धरो, उसको पीछे डालो काले कपड़े में और गुणों को हमेशा सामने रखो और व्यवहार करो तो सदा सुखी रहेंगे। तो सतयुग त्रेता तक तो हम बहुत सुखी रहे, लेकिन द्वापर युग जैसे आया तो द्वापर युग में धीरे धीरे समाज के अंदर जैसे जैसे बुराई बढ़ती गई, कलयुग आया, कलयुग में और बुराई बढ़ती गई, तो मनुष्य एक बार हड़बड़ाहट में उठा तो उसको ध्यान में नहीं रहा और तुरंत कावड़ पकड़ के चलने लगा, उसको ध्यान ही नहीं रहा, काला कपड़ा आगे हो गया, सफेद कपड़ा पीछे हो गया। और तब से लेकर हम जीवन में यही तरीके से चल रहे हैं, काला कपड़ा आगे सफेद कपड़ा पीछे। किसी के अच्छाई दिखाई दे तो उसको पीछे डाल देते हैं, बुराई दिखाई दे तो हमेशा सामने रखते हैं, तो सदा सुखी नहीं रह सकेंगे ना। सदा सुखी रहने का मंत्र तो यही है किसी के भी अवगुण चित्त न धरो, भगवान भी हमें यही कहता है। और इसी तरह से वापस अब वो कावड़ को चेंज करने का समय आया है, वापस उसको चेंज कर लो, काला कपड़ा पीछे कर दो, सफेद कपड़ा आगे कर लो और हरेक की अच्छाई को देखते हुए व्यवहार करते हुए जीवन में आगे बढ़ो, संबंधों के उलझन सारी समाप्त हो जाएंगी। अच्छाई को देखेंगे तो सारी उलझन ही समाप्त, और सारी उलझन समाप्त हो गई तो जीवन कितना सुखद हो जाएगा। सुख को आने का अवसर दो, हरेक के जीवन की अच्छाइयों को देखते हुए व्यवहार करते चलो। जीवन के अंदर पॉजिटिविटी में जो पावर है, नेगेटिविटी में वो नहीं है। अच्छाई को देखते हुए, पॉजिटिव साइड को देखते हुए चलेंगे तो पॉजिटिव साइड, जो ब्राइट साइड है, वो हमेशा जीवन को रोशन करती जाएंगी, जीवन को सुंदर बनाती जाएंगी। तो ये विधि है संबंधों में चलने की। रावण की 3 शिक्षाएं शायद हम सबके लिए आज के युग में बहुत उपयोगी है कि कभी भी अपने हितेशियों की बात को ठुकराना नहीं, शुभ कर्म करने का संकल्प आए तो उसको देर नहीं करना, और तीसरा है सामने वाले को कभी भी कम नहीं समझना। तो संबंधों में सदा सुखी रहेंगे। चौथी बात हमने पहली देखी, स्वयं की जो उलझने हैं उसको मिटाने की विधि। दूसरा हमने देखा, साधन सुविधाओं को मालिक बन करके प्रयोग करो। तीसरा देखा, संबंधों की उलझनों को समाप्त करने के लिए जो शिक्षाएं हमें प्राप्त हुई हैं उनको सामने रखते हुए चले तो सदा सुखी रहेंगे। और चौथा कि परिस्थिति और समस्याओं में उलझे हुए जीवन है तो परिस्थिति भी आएगी, समस्याएं भी आएगी। ये तो हो नहीं सकता है कि चैलेंजेस ना आए, युग ही है चैलेंजेस का। हर रोज कोई ना कोई नई चैलेंज आती रहती हमारे सामने, कई ना कई नई चुनौती आती रहती है और उन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा, चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, लेकिन द चैलेंजेस जब भी जीवन में आते तो किसी किसी के लिए इट ओपन्स द डोर्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, और किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस गिव देम अ ग्रेट सेटबैक। तो चैलेंजेस सबके लिए आती है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज सामने ले आती है और किसी के लिए सेटबैक ले आती है। किसके लिए चैलेंजेस, किसके लिए अवसर के द्वार खोलती है और किसको पछाड़ने का अनुभव कराती। बहुत सुंदर वहां लिखा था कि चैलेंजेस के वक्त जो सही डिसीशन लेता है, दोज हु मेक द राइट चॉइस, उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं। और चैलेंजेस के वक्त जो गलत निर्णय ले लेता है, रॉन्ग डिसीशन, रॉन्ग चॉइस, उसको जीवन में हमेशा पश्चाताप करना पड़ता है, पछाड़ती है वो, चैलेंजेस भी उसको पछाड़ने वाली महसूस होने लगती है। अब ये राइट चॉइस और रॉन्ग चॉइस कैसे होता है? तो जब हमारा माइंड फोकस नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है, मन में कई प्रकार के स्ट्रेस को पाले हुए हैं, तो व्यक्ति की टेंडेंसी रॉन्ग चॉइस करने की हो जाती है। जब मन फोकस नहीं है, कंफ्यूजन से भरा हुआ है, इतना कंफ्यूजन है तो हम इमीडिएट प्रेजेंट को देखते हैं और इमीडिएट प्रेजेंट को देख करके यही सोचते हैं, देखिए इमीडिएट प्रेजेंट में जो प्राप्ति हो रही उसको तो ले लो, बाद की बात किसने देखी। और इसलिए इमीडिएट प्रेजेंट को चुनाव करते हुए रॉन्ग चॉइस करते हैं, तो लॉन्ग रन में जो हमें प्राप्त होना है उसके प्रति हमारा गलत चुनाव हो गया, रॉन्ग डिसीशन हो गया। इसीलिए व्यक्ति को बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। तो चैलेंजेस जब सबके लिए है, चुनौती हर एक के लिए है, तो हर एक के लिए जो चुनौती है उस वक्त मेडिटेशन के द्वारा माइंड को शांत करके, फोकस्ड करके, अगर उस को डिटैच्ड होकर के देखे, है ना, होलिस्टिक रूप में उस परिस्थिति को देखा जाए, उस सिचुएशन को देखा जाए, तो शायद हमें बहुत अच्छी तरह से सारा समझ में आए और तब हम राइट चॉइस ले सके। लेकिन जब जब हम उतावले में एकदम एक्साइटमेंट में आकर के या स्ट्रेस में आकर के या एकदम हड़बड़ाहट में आकर के गलत चुनाव कर लेते हैं और फिर बाद में व्यक्ति कहता है ये एस्पेक्ट तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये बात तो मैंने समझी नहीं थी, ये तो मेरा ध्यान ही नहीं था, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, तब वो गलत चुनाव कर लेता है और रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण जीवन में हमेशा पश्चाताप का अनुभव करना पड़ता है। और उस वक्त फिर वो क्या करता है, भगवान को याद करता है, हे प्रभु मेरी ये मुसीबत टाल दो, मेरी ये परीक्षा से मुझे उभार लो। इसी तरह से परमात्मा को याद करने का प्रयत्न करता है कि प्रभु मुझे इसमें से बचा लो। कई बार ऐसा होता है कि आप भगवान को याद करो और आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, भगवान ने सुन लिया तो क्या होता है, भगवान पर हमारा विश्वास निश्चय बढ़ जाता है, भगवान ने हमारी बात सुन ली है ना, और हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, खुशी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रार्थना करने पर भी वो प्रार्थना को आंसर करने में टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है और बहुत समय के बाद फिर वो प्राप्ति होती है। तो उस समय भगवान के प्रति हम अपसेट न हो जाए कि भगवान ऐसा क्यों करता है, भगवान हमारी धैर्यता और सहनशीलता को निखारना चाहता है, इसीलिए देर किया ताकि धीरज रखे हम, धैर्यता का गुण अपनाए, क्योंकि जीवन में चलते चलते अधीर्य होने का नेचर हमारा बन गया है। तो भगवान इसीलिए देरी करता है क्योंकि समय का योग भी आना चाहिए वो चीज देने के लिए, और उसके लिए धैर्यता की पात्रता बहुत आवश्यक है। तो भगवान हमारे अंदर पेशेंस और हमारी टॉलरेंस पावर को बढ़ाता है, देने से पहले वो बढ़ाता है, इसलिए बहुत जरूरी है। और कभी कभी नहीं मिलता है, बहुत प्रार्थना करने पर भी नहीं मिलता है, तो उस समय भगवान पर से अपना विश्वास खत्म नहीं करो। लेकिन भगवान से विश्वास खत्म नहीं करो, लेकिन समझ लो कि शायद उसके पास मेरे लिए और बेटर चीज है देने के लिए, और उसका इंतजार करते हुए मुझे प्राप्त करना है। मुझे याद आता है बहुत सुंदर एक सत्य घटना आपको बताती हूँ। एक भाई थे है ना, उसको बैंक की जॉब मिली। उसने जैसे ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसको एक बैंक में जॉब मिल गई। बहुत अच्छी जॉब थी उसकी, बड़ा खुश था उस जॉब से। लेकिन क्या होता है कि हर जगह पॉलिटिक्स तो चलती ही है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो चलती ही है, तो कुछ ऐसी पॉलिटिक्स खेली गई उसके साथ में भी कि उसकी वो जॉब चली गई। उसके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम आ गया जो उसने नहीं किया था, लेकिन उसके ऊपर ऐसा झूठा आरोप आया और आखिर उसको नौकरी उसकी चली गई। तो उसको बहुत दुख हुआ कि मेरी गलती नहीं और मेरी जॉब चली गई। अब जहां जहां दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करता था तो कहीं से इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आता था। उसको बड़ा परेशान हो रहा था अंदर में कि भगवान भी क्यों ऐसा मेरे साथ अन्याय क्यों करता है, भगवान तो जानता है ना कि मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरी जॉब चली गई, करने वाले दूसरे और मैंने अपनी जॉब को घुमाया। तो उसको जैसे बहुत फील हो रहा था। उतने में जब जॉब के लिए देख रहा था, इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए सोच रहा था, जहां फॉर्म फिलअप करता था कोई इंटरव्यू का कॉल नहीं आता था, तो बड़ा अपसेट हो रहा था। लेकिन फिर भी उसकी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड तो थी अंदर में कि शायद कुछ अच्छा ही होना होगा। एक दिन वो बैठा था और उसका फ्रेंड आया कि तुम खाली बैठा है, अभी तो कोई तेरे पास जॉब है नहीं, तो ये आईएएस का फॉर्म है भर दे। और उसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर ले। होशियार तो था ही पढ़ने में, तो उसने बैठे बैठे वो फॉर्म भर दिया कि चलो जब तक नहीं है तब तक यही कर लेते हैं, और स्टडी कर रहा था। और आईएएस को के एग्जाम के लिए अपीयर किया तो सचमुच आईएएस में पास हो गया। आईएएस में पास हो गया तो बड़ी अच्छी उसको ये मिली। तब उसको महसूस हुआ कि भगवान जानता था कि मेरे लिए वो छोटी सी बैंक की नौकरी वो काफी नहीं थी, शायद मेरी योग्यता के हिसाब से उसने मेरे लिए सही चुना था, लेकिन क्योंकि मैं बैंक की जॉब में चला गया और अगर मेरे ऊपर ये इल्जाम नहीं आता था तो मैं छोड़ता भी नहीं था, मैं आईएएस की एग्जाम देने के बारे में भी नहीं सोचता था और शायद जीवन भर मैं उसी जगह पर होता था हमेशा के लिए। लेकिन भगवान चाहता था कि मेरी योग्यता सही जगह यूज होनी चाहिए, तो भगवान के पास हमेशा हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन रहता ही है। इसीलिए अगर कोई चीज जाती भी है और प्रार्थना करने पर नहीं मिलती है तो समझ लो कि भगवान के पास हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है, और जब बेटर ऑप्शन है तो उस चीज की ओर हम फोकस करें अपने माइंड को, और देखो तो आपको महसूस होगा कि कैसे आप जीवन के अंदर तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हैं और कितना सुंदर आपको अवसर मिलता जाता है, और जीवन में आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी पोटेंशियल जो है उसको सही दिशा दे सकेंगे, और सही दिशा देते हुए आप जीवन में आगे बढ़े। इसलिए अगर कुछ छूटता भी है, चला भी जाता है, तो भी आप अफसोस करने के बजाय और अच्छे के लिए प्रयत्न करते चलो तो जीवन के हर परीक्षाओं से, हर प्रकार की चुनौतियों को पार करते हुए आप नित्य आगे बढ़ते जाएंगे, और तब हम सुख को अपने जीवन में आने का अवसर देते हैं। मनुष्य अपनी मनस्थिति को दुखी बनाना चाहे तो दुखी बना सकता है, सुखी बनाना चाहे तो सुखी बना सकता है। दोनों ऑप्शन हमारे हाथ में है, चुनाव हमारे हाथ में, हम कौन सा चुनना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। तो इसीलिए आज के इस सुनहरी संध्या में, इस टॉक में, सुख को अपने जीवन में आने का अवसर दो। सुख आना चाहता है लेकिन ये उलझनों को हम समाप्त करें अपने जीवन की, अनेक प्रकार की ये जो उलझने हैं इन उलझनों को समाप्त करते हुए उनको आने दो। और कोई बातें आती है थोड़े समय के लिए आती है, छोड़ दो, अच्छा ही होना है, हर बात में कुछ अच्छा ही होना है, ये सोचते हुए कदम आगे बढ़ाते चलो और देखो कैसा अच्छा होने लगता है। जीवन सदा प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा रहेगा, सुखी रहेंगे, और सदा सबकी विशेषता को सामने रखते हुए व्यवहार करते चलो, अवगुणों को चित न धरो। आज की दुनिया में कभी कभी वो अवगुण ही चित पर रखते हैं तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए सदा सुखी रहना है तो हर एक के गुणों को देखते हुए, विशेषताओं को देखते हुए आगे चलते चलो ये जीवन की यात्रा में। इसलिए कहा हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। जीवन की यात्रा में अनेक मौके आते हैं या अवसर आते हैं, सुखी होने के उन अवसरों को लेते जाए और सुख का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ऑप्शन
सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है, सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
अभी हम जीवन का सिद्धांत बनाकर अपने बहुत सरल सुंदर बहुत ही जैसे दिल को छूने वाली बातों से हमको सुसज्जित किया। आदरणीय दीदी जी का हम बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि जैसे खुशी का हम करतल ध्वनि से आज प्रकट कर रहे हैं, ऐसे ही हम जीवन में निरंतर खुशी से भरपूर रहे और सबको खुशियां बांटे। और आप सबको जैसे बताया गया एवरी संडे 6:30 to 8 टॉक रहता है। नेक्स्ट जो संडे का टॉक रहेगा वो इमोशनल मैच्योरिटी के टॉपिक पर रहेगा, तो आप सबको संडे टॉक में भी पुनः निमंत्रण है। और 19 अप्रैल जैसे कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, तो तमिल न्यू ईयर गेट टूगेदर 19 अप्रैल को मॉर्निंग 9:30 to 1 आयोजन किया गया है। और विशेष इस क्लास में दीदी का नाम सुनकर कई स्थानों से भी पहुंचे हुए बाबा के बच्चे हैं, तो उनसे निवेदन है कल सवेरे का क्लास मुरली क्लास आदरणीय उषा दीदी जी कराने वाले हैं, तो सभी को खुला निमंत्रण है, सवेरे मुरली सुनने के लिए आ सकते हैं। और फिर से एक बार इस साल में मिलते रहे सच्ची गीता ज्ञान भी हम अधिक मास में सुनेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। किन शब्दों में आपका धन्यवाद कहे ऐसा लगता है, ऐसा ही लगता है ना, टीवी में भी आपका प्रवचन आगे सुनते हुए हम अपने जीवन को खुश बना के रखेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी।
शान है सच्चे मानव की शान है, क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है, राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है, सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है।